आगे रखो नंबर 14, 111 से 118, 111 से 118। मोमिनीन की सिफात, और ये है वो सौदा जिसके लिए हम सब तैयार हैं इंशाल्लाह। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्नलहुमुल जन्ना। बिला शुबा अल्लाह ताला ने मुसलमानों से इनकी जानों को और इनके मालों को इस बात के बस खरीद लिया है कि इनको जन्नत मिलेगी। वो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं जिसमें वो कत्ल करते हैं और कत्ल किए जाते हैं, और इस पर सच्चा वादा है तौरात में और इंजील में और कुरान में, और अल्लाह से ज़्यादा अपने अहद को कौन पूरा करने वाला है। तो तुम लोग इस बै पर, इस सौदे पर जिसका तुमने मामला ठहराया है, खुशी मनाओ, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इस सौदे की शराइत क्या है? अत्ताइबून। सबसे पहला लफ्ज़ ज़रा नोट करें, पहले तो मैं आपको ज़रा सा लफ्ज़ तौबा पे ले जाऊँ ताकि आप इसको इंजॉय कर सकें। ताइबून कौन होंगे? गुनाह करने वाले। आप देखिए कि गुनाह ना हो तो तौबा कैसे हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तौबा कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि आप तौबा क्यों करते हैं, आपके तो अल्लाह ने पिछले अगले सारे गुनाह माफ़ कर दिए। तो आपने फरमाया कि अफला अकून अब्दन शुकूरा। अंबिया कराम की जो तौबा होती है ना, वो रफ़ा दरजात के लिए होती है, जुमला लिखिए। लेकिन उम्मतियों की तौबा गुनाहों की माफ़ी के लिए भी होती है। हम नबियों के बारे में ये नहीं सोच सकते कि उनके कोई गुनाह थे तो अल्लाह ने उनसे तौबा करवाई। हम उनके बारे में ये सोचते हैं कि अल्लाह ने उनको मज़ीद दरजात देने थे। तो जब जन्नत के सौदे में सबसे पहले तौबा को रखा, तो फिर मैं और आप इस पारे के साथ तौबा के लफ्ज़ को क्यों ना देखें। अब आगे अगली खूबी सुनिए। अत्ताइबून, वैसे तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम करने वाले, रोज़ा रखने वाले। अभी तक नमाज रोज़ा नहीं आया, अब देखें पहले तौबा, फिर इबादत, फिर हम, फिर रोज़ा। और रोज़े से उलमा ने यह लफ्ज़ लिया, राह हक में सफ़र करने वाले, रुकू और सजदा करने वाले, नेक बातों की तालीम देने वाले, और बुरी बातों से बाज रखने वाले, और अल्लाह की हदों का ख्याल रखने वाले, चौकीदार, सिक्योरिटी मैन। और ऐसे मोमिनीन को खुशखबरी सुना दीजिए, पैगंबर को और दूसरे इन मुसलमानों को जायज़ नहीं कि मुशरिकीन के लिए मग़फ़रत की दुआ मांगे, अगरचे वो रिश्तेदार ही हों। इस अमर के ज़ाहिर हो जाने के बाद के ये लोग दोस्ती हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के लिए दुआए मग़फ़रत करना, वो सिर्फ वादे के सबब था जो उन्होंने इससे वादा कर लिया था। फिर जब इन पर ये बात ज़ाहिर हो गई कि वो अल्लाह का दुश्मन है, तो वो इससे महज बेताल्लुक हो गए। वाकई इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल और बुर्दबार थे। ये है रिश्तों की आजमाइश। हर नबी को रिश्तेदारियों की आजमाइश है, और इब्राहिम की आजमाइश तो बड़ी ही सख्त थी कि बाप शिर्क पे और बेटा तौहीद परस्त है। और जहाँ बड़ा नरम दिल और बुर्दबार कहा जा रहा है, हालांकि आगे आप पढ़ेंगे कि कौम के साथ सामने खड़े होकर उनकी बुराइयों पे तनकीद कर रहे हैं, हाथों से बुतों को भी तोड़ रहे हैं, तो दिल की नरमी का ये मतलब नहीं कि अपने रिश्तेदारों की गलतियों पे उनको रोकें और टोकें नहीं। अल्लाह हमें भी ये जुरत दे कि अपनों में जो खामी देखें उसको जिस हद तक मुमकिन है रोक सकें। और अल्लाह ऐसा नहीं करता कि किसी कौम को हिदायत करके बाद में गुमराह कर दे, जब तक कि वो इन चीज़ों को साफ साफ ना बता दे जिनसे वो बचे। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानता है। बिला शुबा अल्लाह ही की सल्तनत आसमानों और ज़मीन में, वही ज़िंदा करता है और वही मारता है, और तुम्हारा अल्लाह ताला के सिवा ना कोई दोस्त है और ना कोई मददगार। अल्लाह ताला ने पैगंबर के हाल पर तवज्जो फरमाई, और मुहाजरीन और अंसार के हाल पर भी, जिन्होंने ऐसी तंगी के वक्त में पैगंबर का साथ दिया। इसको हाईलाइट करें। असल आपकी कीमत लगती है वक्त के हिसाब से। वक्त ज़रूरत हो उस वक्त का $1, ज़रूरत ना हो उसके $1,000 से भी ऊपर हो जाता है। यही सहाबा का मुकाम है। फिर उन्होंने हमारी तरह मिलियंस नहीं दिया होगा अल्लाह के रस्तों में, उनका शायद इतना होगा भी नहीं। अबू बकर के बारे में आप हमेशा ये तो सुनते सुनाते हैं कि उन्होंने अपना घर का सारा सामान दिया। कभी कहीं आया कितना था? कितने ट्रक आए थे मस्जिद नबी के बाहर? इकिया का फर्नीचर और फलां ब्रांड के सोफे, कुर्सियां में, हु केयर्स? शायद मेरे आपके क्लोजेट का सामान भी ज़्यादा हो। अबू बकर के उस छोटी सी कुटिया के दीवारों में भी छड़ियां मार मार कर देख रहे थे कि झरियों में तो नहीं कोई चीज़ छुपी रहेगी। अल्लाह को क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। इसीलिए फरमाया कि जिन्होंने तंगी के वक्त में पैगंबर का साथ दिया, और इसके बाद के इनमें से एक गिरोह के दिलों में कुछ तजलजुल हो चुका था, من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے. اور وَلَلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ. اور تین شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا, پوسٹ پون رزلٹ ہے ان کا, یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے. توبہ, اس کو بھی نوٹ کیجئے گا. اور پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم والا. تین دفعہ اس آیت میں توبہ کا لفظ ہے, اس کو نوٹ کیجئے گا. قرآن کی یہ آیت آپ کو مجھے توبہ کرنے پہ مائل کرتی ہے. کیا پتہ چلا کہ ایمان سے متعلق تین آیات, 111 ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم, جان اور مال کے بدلے جنت سب سے بڑے نفع کا سودا. اور آیت 112 اسی سے اگلی, التائبون میں مومن کامل جو ہوتا ہے اس کی صفات کا تذکرہ ہے. اور آیت 113 میں ایمان کے بغیر کوئی نسبت کام نہیں آئے گی. اب ان ساری آیتوں کو اور پیچھے والی آیت جو 20 تھی, خلط و عملا صالحا, ان کو جمع کریں تو چند چیزوں کو سمجھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت بالکل اینڈ کی طرف ہے اور اس میں آپ کو مجھے انسانوں کے مختلف گروہوں سے ملانے کے ساتھ ساتھ ان اللہ حشترا والی آیت دکھائی جا رہی ہے. آپ اور میں دنیا کے اس بازار میں نکلے, اللہ نے آپ کو مجھے ایک کموڈیٹی کے طور پہ پیش کیا. بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا تو بس اسی وقت سے اس کی قیمت لگنی شروع ہوتی ہے. آپ کی میری قیمت بہت سارے لوگ لگاتے ہیں, ہمارے گاہک بہت ہیں. وہ کسی نے کہا نا کہ تو نے خرید کے انمول کر دیا ورنہ میرا کون تھا طلبگار. ذرا سے اس کو دنیا کی زبان میں سمجھیے کہ جب کوئی چیز نیولی لانچ ہوتی ہے تو مہنگی ہوتی ہے. iPhone 16 لوگ انتظار کر رہے ہیں, سپٹمبر میں آنے والا ہے, خبریں بھی ہیں, اس کی بھاری قیمت دینے کو تیار ہے. بھائی 15 لے لو. نہیں نہ چھوڑے نا, 16 لے لیں. میں کہتی بھائی 16 کیوں لینا ہے, پھر ویٹ کرو 17 لیں گے. پھر 17 لیں گے تو کہیں گے چلو 18 لے لیں. خوب سے خوب ترقی تلاش. اللہ نے یہاں ان اللہ اشترا کہہ کر ایک بات بتا دی کہ اللہ کا مومن بننا اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچنا. اللہ میں اپنی نہیں ہوں. بندہ اپنا مال اور اپنی زندگی اللہ کو دیتا ہے تاکہ اللہ اس کو بدلے میں اپنی جنت دے دے. اسی کو خود سپردگی کہتے ہیں, یہ حوالگی ہے. یہی ہے اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یاد رکھیے کسی بھی چیز سے بندے کا حقیقی تعلق ہمیشہ حوالگی کا ہوتا ہے. پورا ہی دے دو, تھوڑا تو نہیں دیتے. جب اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو اللہ یہ نہیں کہتا تھوڑا مجھے دے دو تھوڑا دوسروں کو دے دو. جنت صرف ان کو ملے گی جو پورے کے پورے اللہ کے بن گئے. آپ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی, تو پھر بوڑھے کیوں ہوئے, بال کی سفید ہوئے. اب جب بندہ اللہ کے دین کو اس طرح اختیار کرے کہ دین کا معاملہ کوئی علیحدہ معاملہ نہ ہو بلکہ اس کا ذاتی معاملہ بنے. میں اکثر ادھر ایک جملہ بولتی ہوں, کئی لوگوں کو بعد میں بھی ایکسپلین کرنا پڑتا ہے مجھے کہ یہ کیا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ سانجا کھاتا, جوائنٹ اکاؤنٹ. اے اللہ تیرا میرا جوائنٹ اکاؤنٹ. جو سب کچھ میرا ہے نا وہ اصل میں تیرا ہے. ہاں اس میں سے میں اپنی ضرورت کا خرچ لوں گی, لیکن یہاں یاد رکھیے کہ بس ضرورت کے درجے پہ پھر آپ پہنچ چکے ہوں, خواہش کے درجے پہ نہ ہو. پھر تو شاید اللہ کے کھاتے میں سے بھی آپ کے کھاتے میں آنا پڑے گا. جب آپ اپنے آپ کو اللہ کا سمجھتے ہیں نا, وہی آپ کی دلچسپیوں اور آپ کے اندیشوں کا مرکز ہوتا ہے. دین اگر مال کا تقاضا کرے آپ اپنا دین پیش کر دیتے ہیں. دین کو آپ کا وقت چاہیے, بسم اللہ. دین کو آپ کی کوئی اسکل کو خوبی چاہیے, بسم اللہ. آپ وقف ہو جاتے ہیں, ڈیووٹیڈ ہیں. آپ کے بچے, آپ کا گھر الگ نہیں رہتا. حتیٰ کبھی ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ آپ کو اپنا وجود مٹا کر, اپنے مال سے بے مال ہونے کا خطرہ مول لے کر, دین میں اپنا حصہ ڈالنا نہیں دین کا حصہ بننا ہوتا ہے, تو بندہ اس سے پیچھے نہیں ہوتا. جب بندہ ایسا کام کرتا ہے تو پھر یاد رکھیے وہ صراط مستقیم پہ جمع رہتا ہے. گاڑی کبھی آپ نے پہاڑی پہ چڑھائی ہو, نہیں رک سکتے. ہینڈ بریک بھی لگا لیں तो गाड़ी पीछे गिरती है। जब आप आगे जा रहे हैं ना तो आपको फिर आगे ही जाना होगा। बहुत स्ट्रांगली ब्रेक पे पाँव भी रखेंगे तो फिसलेंगे। सिराते मुस्तकीम ऐसे नहीं है, प्लेन पूरी सीधी भी करेंगे तो ग्रेविटी होती, कभी कभी बड़ी सीधी ऊपर जाती है। ये सारे कॉन्सेप्ट सूरत फातिहा की तफसीर में किए हैं, इंशाल्लाह जहाँ आपसे सुनना चाहें सुन लें। रोशनी का सफ़र वेबसाइट पे मौजूद है, यूट्यूब पे भी मौजूद है। दीन का अमूमी सफ़र ऐसा होता है, आपके मेरे हालात को मैं बता रही हूँ। आप चलते हैं ना, अब आप देखिए यहाँ से आप ज़मीन के करीब हैं, आप जितना ऊपर जा रहे हैं ना ये ग्रेविटी से आप ऊंचे होते जा रहे हैं। आप सिराते मुस्तकीम पर चलते ही जाएंगे, अगर जहाँ चलना रुकेंगे आप पीछे गिरेंगे। आपका मेरा कामयाबी का नुक्ता क्या है कि चलते ही। अब आप जब निकले सबसे पहला आपका खरीदार पता कौन होता है? शैतान। बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ तो शैतान उसके पास आके उसको घुट्टी दे रहा होता है, फिर उसका अपना नफ्स, फिर उसके माँ बाप, मुआशरा, ख़ानदान सब हैं, लेकिन सब की वेट बड़ी ही कमज़ोर है। वो थोड़ी सी कीमत लगाते हैं आपकी। वही मिसाल जो कई दफ़ा दी है कि मैं अपना फ़ोन बेचने निकलूँ तो कोई मुझे उसका 100 दे, दूसरा के 200 दे, तीसरा कहता है 500 का ले लो, तो मुझे किसको बेचना है। अफसोस ये है कि जल्दबाजी की वजह से अक्सरियत अपना सौदा अल्लाह की बजाय दूसरों के हाथ बेचते हैं। जब कहते हैं ना मुझे वक्त नहीं मिलता, वक्त किसका है? आप कहते हैं मेरी सेहत ख़राब है। सेहत किसने आपको दी? अल्लाह ने दी है। अल्लाह ताला इन आयात में हमें तबूक के हालात की नज़र से इंसानों के मुख्तलिफ गिरोहों से मिलाते हैं। आप कह सकते हैं कि तबूक की जंग इंसानों के मुख्तलिफ गिरोहों को नुमाया करने के लिए थी कि कौन है जो इस्लाम को इस हाल में थामे रखे कि कुर्बानियाँ भी देनी पड़े, अपनी दुनिया बिगाड़ कर दीन को बचाना पड़े, और कौन है जो मुश्किलों में अल्लाह की तरफ झुकने की बजाय दुनियावी फ़ायदों की तरफ झुकता है। और ये जो स्लोब है ना, इस पे तो आप एक जुमला लिख लीजिए, जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं हुआ वो तबाह होगा। ये अल्लाह के नबी की हदीस है। बिल्कुल इसी तरह से हर दिन नेकियों की तरफ बढ़ना है। कुछ नेकियाँ टाइम बाउंड होती हैं, तौबा भी टाइम बाउंड है। कभी कभी नेकी का एक मौका छूट जाना जन्नत के छूट जाने के बराबर होता है। आप कोई कनेक्शन लेते हैं ना जहाज़ का, यानी राउंड ट्रिप है आपका, आपको अटलांटा से निकलकर लंदन जाना है, और लंदन से आपको फिर ओस्लो जाना है, और ओस्लो से फिर वापसी। इसी तरह अगर बिलफर्ज आपने लंदन से ओस्लो की टिकट छोड़ दी तो आपकी अगली रिटर्न टिकट कैंसिल होती है। ये दुनियावी असूल है। नेकियों का कोई एक मौका छूटना कई दफ़ा अगली बहुत सारी नेकियों से आपको दूर कर देता है। एक बार पीछे रह जाएं तो इतनी जल्दी से नेकियां करें कि सबसे आगे निकल जाएं और अल्लाह की रज़ा को पा लें। हमने क्या सीखा कि नेकी का कोई मौका अपनी सुस्ती से नहीं गंवाना, और ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद अल्लाह की रज़ा को चाहना है। अल्लाह आपको मुझे इसकी तौफीक दे। आगे आप देखेंगे कि अल्लाह ताला इसका तरीका हमें सूरत के एंड पे देते हैं। रुकू नंबर 15, 119 से 122। अल्लाह बंदे का हक नहीं रखता। आप रखते हैं किसी का हक? एक वक्त खाना खिला दे ना आपको, दावत दे दे तो आप कहते हैं मैंने भी उनकी दावत करनी है, क्यों? खैर है, उन्होंने भी की थी ना, कि वो मेरी अम्मा आई थी तो उन्होंने की थी, अब मुझे उनकी अम्मा की करनी है। तो जुमला लिख लीजिए, अल्लाह किसी बंदे का हक नहीं रखता। और आपको आपके रब की आखिरी पुकार है सूरह तौबा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। ऐमन वालों अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहो। मदीना के रहने वालों को और जो देहाती इनके गिर्दो पेश हैं, इनको ये ज़ेबा नहीं था कि रसूलुल्लाह को छोड़कर वो पीछे रह जाएं, और ना ये कि अपनी जान को इनकी जान से अजीज समझें। हाईलाइट करिए और सोचिए, अगर आज अल्लाह के नबी दुनिया में होते, हमारा ईमान अल्लाह के नबी दुनिया में नहीं, आप जा चुके, कॉन्सेप्ट क्लियर रख कर बात करें, हैंकी पेंकी बात नहीं। अल्लाह के नबी ज़िंदा नहीं है, उनके बरज़ख की ज़िंदगी अल्लाह ने जितनी बता दी बस वही है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज ज़िंदा होते तो हमारा उनके साथ क्या ताल्लुक? अगर आपको कोई कहे कि मिसाल है, अब इसको गलत ना लीजिएगा, सिर्फ समझने के लिए, अटलांटा शहर में अल्लाह के नबी विज़िट करने वाले हैं और ख़बर दे दी जाए कि चलिए 2 माह बाद की खबर, पूरी दुनिया से कितने मुसलमान अल्लाह के नबी को मिलने आते हैं। सारी आदतें, 1.25 मिलियन नहीं, कुछ उसमें कुछ 1-2 बिलियन तो नॉन मुस्लिम भी आते हैं कि जरा हम देखें वो कौन सा शख्स था, द मैन हु शोकदार। मेरा ख्याल है मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम आते हैं, ब्रिटिश तो सारे ही आ जाता कि ज़रा देख के आए इस बंदे ने जो इनकलाब पैदा किया वो क्या है। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, सारों ने नहीं आना था, ख्वाहिश में थे। वन टाइम आना होता तो आ भी जाते, कहते अच्छा इतनी मोहब्बत मिल गई तो फिर ऐसा करते हैं कि अल्लाह के नबी का विज़िट बढ़वा लें, चले अभी 3 दिन रहने दीजिए उनको, फिर कितने होते हैं? और एक हफ्ते का टूर होता, फिर एक माह के लिए रोक लिया जाता, एक साल के लिए, तो क्या फिर उम्मत मुस्लिमा के वो सारे 200 बिलियन 2 बिलियन और दुनिया वाले रहते आते नहीं। अब आप कहते हैं कि सारे ही आ जाते हैं, तो फिर जब हय्याल सलार हय्याल फलाह की पुकार है, ये किसकी तरफ से? उसी नबी की शरीयत, उसी नबी के ज़रिए ये कुरान मिला। आज इस कुरान की दावत पे कितने लब्बैक कहते हैं? अगर आज सुस्त है ना, तो नबी के आने पे भी सुस्त होना था। अगर आज दिल्ली दिल्ली है ना, आज बिजी है, मेरी जॉब है, आज मेरा ये काम है, तो बिलीव में ये तब भी होना था। और आजमाइश बड़ी सख्त होती, सहाबा की आजमाइश ही बड़ी सख्त थी कि नबी मौजूद। ये जो मक्का वालों और मदीना वालों की हम पकड़ समझते हैं, देखते हैं उनकी इतनी पकड़ होती, वो क्यों होती थी? कि वक्का नबी मौजूद था, तो कही अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें आज के दौर में पैदा किया है। सहाबा कराम में से कुछ तबूक के सफ़र से पीछे थे, अबू खैसमा नाम ही आए तो उनके बारे में कह रहे हैं कि मैं अपने घर में था, मज़े से बैठा था, खेतों में काम कर रहा था, दोपहर हुई, मेरी बीवी आई, उसने छिड़काव किया, फिर रोटी खोली और रोटी सालन मेरे सामने था, बस लुकमा तोड़ के यहाँ गया। तो मुझे ख्याल आया कि अल्लाह के नबी किधर होंगे। बस मैंने कहा तुफ है तुझ पे कि तू यहाँ मज़ा कर रहा है और नबी पता नहीं इस वक्त कहाँ, उन्होंने खाया भी है कि नहीं खाया। आप ज़रा महसूस कीजिए ना उस लेवल को, ये दिलों की बातें होती हैं, ये कोई ज़ुबानी बातें नहीं। फौरन बीवी को कहा कि मेरा घोड़ा तैयार करो, और रेड़ लगाई और काफले को जाकर मिल गए। तौबा, ये तौबा का तरीका है। ये ना सोचो पीछे क्या हुआ, आगे देखो क्या होना। गाड़ी चलाते हुए कोई बैक मिरर में ही देखता रहे तो हादसा होगा। जिंदगी के सफर में कितने गुनाह आप कर चुके हैं, तौबा कीजिए। अब जरा इस इमोशनलिज्म को देखिए जो इस आयत में दिखता है। फरमाया मदीना के रहने वालों को और जो देहातीन के गिरदो पेश हैं, इनको ये जेबा न था कि रसूलुल्लाह को छोड़कर पीछे रह जाएं, और न ये कि अपनी जान को इनकी जान से अजीज समझें। ये इस सबब से कि इनको अल्लाह की राह में जो प्यास लगी और जो थकन पहुंची और जो भूख लगी और जो किसी ऐसी जगह चले जो काफिरों के लिए गुस्सा दिलाने का सबब हो, और दुश्मनों की जो कुछ खबर ली, इन सब पर इनके नाम एक एक नेक काम लिखा गया। यकीनन अल्लाह ताला मुहसिनीन का अजर ज़ाया नहीं करता, और जो कुछ छोटा बड़ा उन्होंने खर्च किया और जितने मैदान इनको तय करने पड़े, ये सब भी इनके नाम लिखा गया ताकि अल्लाह इनके कामों का अच्छे से अच्छा बदला दे। क्या पता चला, देर से निकले हो तो तेज़ चलो ताकि आगे पहुँचो, ये जुमला इनके लिए था। और मुसलमानों को ये ना चाहिए था कि सब निकल खड़े हों, बस ऐसा क्यों ना किया जाए कि इनकी हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जाया करे, ताकि वो दीन की समझ बूझ हासिल करें, और ताकि ये लोग अपनी कौम को जबकि वो इनके पास आए डराएं ताकि वो डर जाएं। यह है इस्लाम का तरीका तालीम। ईमान से मुतल्लिक देख लीजिए दो आयतें हैं, 119 तौबा, सच्चों की सोहबत सच्चा होने की पहचान है, और तौबा 122, सबसे बेहतर वो जो इल्म सीखे और सिखाए और उस पर खर्च करें। इस्लाम से ताल्लुक़ के दो दर्जों को ज़रा सा कुछ नक्शों की मदद से देखते हैं। एक वो होता है जिसकी सारी वफादारियाँ इस्लाम के साथ होती हैं, ज़िंदगी और मौत का मसला बनता है, वो सच्चा मोमिन होता है, और एक मुनाफिक होता है। सच्चा मोमिन कौन है? कि हर हाल में सच्चा होता है। चले आज की ज़बान में बात करती हूँ इंश्योरेंस। आप चीज़ों की इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? आग लग गई तो ये होगा, चलो इंश्योरेंस ले लेते हैं। अच्छा ये हो गया तो वो हो गया, सिक्योरिटीज़ है ना। और कुछ हेल्थ इंश्योरेंस, यानी बीमार हो गए तो फिर इतना खर्चा आएगा तो क्या होगा। इस सारी चीज़ों को, इस सारे सिनेरियो में समझ कर अगर आप और मैं आगे बढ़ गए तो इंशाल्लाह बहुत कुछ होगा। सच्चे मोमिन सिक्योरिटीज़ नहीं मांगते, तहफ़ुज़ात नहीं होते उनके। वो कहते हैं कि इस्लाम तरा तो हम भी तर जाएंगे, इस्लाम डूबा तो हम भी डूब जाएंगे, इस्लाम के साथ ये मामला हुआ तो ठीक है, इस्लाम के साथ ये हुआ तो ठीक है, यानी वो अलग से नहीं रहते। जैसे आप देखें कि गूंधे हुए आटे में से पानी नहीं आप निकाल सकते, इस्लाम के साथ आप इस तरीके से घुल मिल जाएं कि आप इस्लाम बन जाए। आप बच्चे का प्यार कर रहे होते हैं तो बच्चे ही बन जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इधर अल्लाह सुबहाना ताला आपको मुझे जो चीज़ दे रहे हैं वो क्या है, इस्लाम के साथ उखड़े उखड़े ना रहो। एक मेकअप होता है जब ऊपर लगा कर करते हैं, थोड़ा सा बोलें, बात करें, हंसें बोलें, वो पिपड़ियाँ बन जाता है। और एक स्किन की ग्लो वो होती है जो आपके अंदर से उभर रही होती है। सच्चा इस्लाम जो होता है ना, वो आपके अंदर से निकलता है। आपको ऐसे लग रहा होता है कि आपको इस्लाम से, और इस्लाम को आपके बगैर कोई नहीं जुदा करेगा। क्योंकि अबू बकर सिद्दीक के बगैर कोई नेकी नहीं हुई। अबू बकर इस दर्जे पे आ गए कि उनके बगैर नेकी नहीं कोई हो पा रही, इस्लाम बन गए वो, और वो इस्लाम उनके लिए बन गया सिद्दीकियत के मुकाम पे। बातें थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी आपको, लेकिन अपने लिए हमेशा अच्छा फैसला करें। मुनाफिक जो होते हैं ना, वो नुमाइशी नेकियाँ बहुत करता है, कुर्बानी के वक्त में पीछे होता है। इसकी हकीकी दिलचस्पियाँ कहीं और होती हैं, और ज़ाहिरदारी में इस्लाम करता है। कहने में आखरत का तलबगार है, लेकिन दुनिया का तलबगार होता है। और मोमिन के लिए दुनिया मता है, कलील है, छोड़ो, 4 दिन की बात है। हमारा तो सफ़र ही बहुत छोटा है, रात ही बहुत छोटी है, दिन ही बहुत छोटा है, लेकिन वो आखरत के सौदे कर रहा होता है। तो जितना ज़्यादा इस्लाम के साथ आपका रियल रिलेशन होगा ना, उतना आपके लिए नेकियाँ करना आसान हो जाएगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इस तरह के मुसलमान बनने को आसान कर दे। आगे भी जाकर हम इसके बारे में जानने वाले हैं, लेकिन यहाँ बस अपना मुहासबा करते हुए फेथ इन एक्शन के पॉइंट्स क्या हैं कि दीन के लिए जान और माल से कुर्बानी करनी भी है और दरेक नहीं करना, अपने इलाके के लिए दीन के इल्म की शम्मा बनना है, सच्चाई के जरिए अल्लाह का कुर्ब पाना है। आगे को नंबर 16, 123 से 129, इस्लामी मरकज़ का इस्तेहकाम, अव्वलीन असूल, यानी इस्लाम मजबूत हो, शहर मजबूत हो, इंस्टीट्यूट मजबूत हो, मस्जिदें और इदारे मजबूत हों, इस्लाम इसकी बुनियाद पर चलता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, एक और पुकार आपके रब की, क्या फरमाया, ए ईमान वालो, इन कुफ्फार से लड़ो जो तुम्हारे आस पास हैं, और इनके लिए तुम्हारे अंदर सख्ती होनी चाहिए, और ये यकीन रखो कि अल्लाह मुत्तकी लोगों के साथ है। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो बाज़ मुनाफिकीन कहते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसके ईमान को ज़्यादा किया है, बस जो लोग ईमानदार हैं इस सूरत ने इनके ईमान को ज़्यादा किया है और वो खुश हो रहे हैं, और जिनके दिलों में रोग है इस सूरत ने इनमें इनकी गंदगी के साथ और गंदगी बढ़ा दी, और वो हालत कुफर ही में मर गए। और क्या इनको नहीं दिखलाई देता कि ये लोग हर साल एक बार या दो बार किसी न किसी आफत में फंसते रहते हैं, फिर भी ना तौबा करते हैं ना नसीहत कबूल करते हैं। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तुमको कोई देखता तो नहीं, फिर चल देते हैं। अल्लाह ताला ने इनका दिल फेर दिया इस वजह से कि वो बेसमझ लोग हैं। तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर तशरीफ लाए हैं, अब जितनी मोहब्बत दिल में नबी सल्लम से महसूस कर सके उसको करें। फिर ये जुमले सुने, जो तुम्हारी जिन से हैं, यानी इंसान थे, बशर थे, जिनको तुम्हारे नुकसान की बात नहायत गिरा गुजरती है, कितना ताल्लुक है उनको अपनी उम्मत से कि ज़रा तकलीफ में नहीं बर्दाश्त कर सकते। तीसरी बात, जो तुम्हारे फ़ायदे के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं, है ना अपनाइत, माँ बाप भी ऐसे ही सोचते हैं, ईमानदारों के साथ बड़े शफीक और मेहरबान हैं, इतना प्यारा नबी, तुमसे इतना प्यार करने वाला, फिर अगर रूगरदानी करें तो आप कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने इसी पर भरोसा किया, और वह बड़े अर्श का मालिक है। क्या खूबसूरत आयत पे सूरत पूरी हुई। और दुआ देख लीजिए, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी पर मेरा भरोसा है, और वही अर्श अज़ीम का रब है। ये आयत 129 नबी सल्लम की मसनून दुआओं से पता चलता है कि सुबह और शाम साथ साथ बार पढ़ना दुनिया के हर गम से निजात का जरिया बनता है। चलिए एक दफ़ा शऊर से पढ़िए, अपना कोई मसला गम तकलीफ़ जहन में रख के पढ़िए। कम से कम मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, मैंने जब से इस दुआ को अपनी दुआओं का हिस्सा बनाया अल्हम्दुलिल्लाह बेगम हूँ। अल्लाह आगे भी ऐसे ही रखे। ईमान से मुतल्लिक दो आयतें 123। सख्त मराहिल इरादों का इम्तिहान होता है। जब आपके सामने कोई बड़ा टारगेट आए ना, फौरन इस जुमले को याद कीजिएगा। फिर 124 तौबा। कुरान की जितनी बारिश होगी दिल उतना ही शादाब होगा। दुआ कीजिए अल्लाह इस कुरान की बारिश से मैं कभी बाहर ना निकाले। सूरत के एंड पे चंद जुमले चंद बातें। नज़रें लोगों पर नहीं रखनी, अल्लाह पे रखनी है, क्योंकि हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा। अच्छे लीडर्स लोगों से मोहब्बत और इनकी कदर तो करते हैं, लेकिन इन पर इन्हेसार नहीं करते कि ये ना रहे तो अल्लाह का काम रुक जाएगा। और नबी की ज़िंदगी से आपको यही दिखता है। फिर इस सूरत में हमने जिस सच्चे मोमिन का तذکرہ पढ़ा, ईमान के उन दर्जों पे जिनको साबिकून अलवलून कहते हैं, तो उसका हाल हमारी ज़ुबान में उस इंसान की तरह है कि जो अपने बच्चों की शादियों और उनकी खुशियों गमियों के वक्त माल को छुपा कर नहीं रखता, बल्कि अक्सर क्या कहता है कि यही तो वक्त होता है जिसमें हम खर्च करेंगे। सच्चा मोमिन भी जब दीन पे किसी ज़रूरत के वक्त को देखे तो यही कहता है कि मैं तो इसी वक्त के लिए अपना माल बचा रहा था कि दीन के रास्ते में कोई मौका आए, कोई प्रोजेक्ट आए और मैं उस पर निछावर कर दूँ। और अगर आपको किसी को वैसे ही देना पड़े, हमारे यहाँ एक जुमला बोलते कहते हैं तोहफ़ा देना पड़ेगा ना, लिफाफा बना लो देना पड़ेगा। ये पड़ेगा क्या होता है? ये निफाक है अल्लाह के रास्ते। जिसको अल्लाह के रास्ते में देना पड़े ना, बस वो मुश्किल है। वो फिक्र करें कि निफाक और इनफाक का फ़र्क याद करें। अमल का नुक्ता क्या है कि सबक लेने वालों के लिए फितना भी नेमत बन जाता है। और मुसीबत के वक्त सिर्फ अल्लाह को पुकारना, उसी पे तवक्कुल करना है। और आपने मैंने चूँकि सूरह तौबा पहले भी पढ़ी है कई दफ़ा, मैंने इसको हर साल कोशिश की कि बहुत ज़्यादा दुआ, इस दफ़ा मैंने इसमें वाक़यात को निकाल दिया, लेकिन बस चंद लोग जो इसमें आपको दिखते हैं, मैं दो तीन जुमले बोल के अपने दिल की तसल्ली करना चाहती हूँ कि कहीं जिन्होंने पहले कभी नहीं सुनी वो उनका हक ना मारा जाए। गज़वे तबूक का मौका सब की छलनी बन गया, मोटी छलनी, बारीक छलनी, उससे बारीक छलनी। एक गिरोह निकला जिसने अपना बेहतरीन एसासा एसेट्स इस्लाम के हवाले कर दिए। फसलें कटने को तैयार थीं, मगर इसको छोड़कर एक ऐसे सफ़र पर रवाना हो गए जिसमें सख्त गर्मी के मौसम में 300 मील सफ़र तय करके उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत का मुकाबला, यानी सुपर सोल पावर का मुकाबला। सामान की कमी का हाल क्या कि एक एक ऊँट पर कई कई लोग बारी बारी सवार होते। खाने के लिए बाज़ दफ़ा सिर्फ एक खजूर एक आदमी के हिस्से आती, लेकिन ये मरहले इरादों के इम्तिहान थे। जब इरादा करने वालों ने इरादे का सबूत दे दिया तो अल्लाह ने खुद बहुत दुश्मन के ऊपर रोकदारी कर दिया और वह मुकाबले के मैदान से हट गए और खून बहाए बगैर मुसलमान कामयाब होकर वापस आए। इसको इस सूरत में कहा गया अस्साबिकून अलव्वलून मिनल मुहाजरीन वल अंसार। दूसरा तबका 102 आयत में था मोतरफीन एतराफ करने वाले। दुनियावी मशागिल की वजह से फौरन तो ना निकले, मगर जब एहसास हुआ कि मैंने गलती की, तौबा की, जब एतराफ़ और शर्मिंदगी की आग भड़क उठी, उनके आंसुओं की कसरत ने उनके अमल की तलाफी की। अल्लाह ने उनको भी अपनी रहमतों के साए में जगह दी, क्योंकि उन्होंने आजजी के साथ अपनी गलती को मान लिया। तीसरा गिरोह था मुखल्लफीन का 118 आयत में थे। ये तीन थे काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी, हिलाल बिन उमैया। अगर ये सफ़र फिर ना निकले, मगर इसको एक कोताही समझा, इनके अंदर तौबा और इनाबत का इतना शदीद एहसास पहले मरहले में नहीं उभरा जो मतलूबा मेयार के मुताबिक हो, इनके साथ सोशल बाइकॉट हुआ, माशर्ती कह लीजिए कट ऑफ हुए। और ये लोग इसके बावजूद के अल्लाह के नबी के सामने आकर अगर झूठ बोल देते कुछ भी नहीं था होना, लेकिन इन्होंने अपनी सज़ा खुद चूज़ की। ये भी एक तौबा होती है। ये लोग इस सोशल बायकॉट के बावजूद उसी शहर में रहे, निकल जाते उधर से, छुट्टी ले लेते, फिर इनकी तौबा पता नहीं साल पे पूरी होती। ये सूरत सिर्फ इसीलिए तौबा नहीं है, ये गुस्सा कर सकते थे, क्या हो गया अल्लाह के नबी, हम इतने काम कर नहीं चुके, अब फिर करें नहीं, जाते वी डोंट केयर, चलो अच्छा इस्लाम भी ना करो, हाल भी ना पूछो, ना ही जाओ, जाएंगे तो बात होगी, पूछेंगे, अपने मज़े करते, अपनी एक अलग ग्रुप बना लेते। तीन थे, थोड़े थोड़ी थे, एक से दो ही बन जाते, दो ही लोग मिलके अलग ग्रुप बना लेते हैं। ये अल्लाह के नबी और सहाबा के खिलाफ अलग होते नहीं किए, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये है असल में मतलूब तौबा। अल्लाह रसूल से दूरी के एहसास ने इनको इस कदर परेशान किया कि ना बाहर इनके लिए सुकून की कोई जगह थी और ना अंदर। दुआ कतलई हे मोलर दुबी मार रहूबत, इनके अंदर पे सुकून नहीं थी। आप जुमला लिखना चाहें तो लिख लें, इनकी परेशानी इख्तियारी थी, इस्तरारी नहीं, बाय हुक और बाय क्रुक नहीं, इन्होंने खुद चूज़ की और इनका दिल पिघल गया। जस्ट दिन तक तौबा और इनाबत के मतलूबा मेयार पे जब पूरे उतरे, इनको भी माफ़ कर दिया और आखिर में कूनू मासादीन में शामिल किए। तो सुनने वालों में से हम में से हर एक मुख्तलिफ ईमान और मुख्तलिफ दर्जे का होगा, हर गुनाहगार भी एक जैसा नहीं होता। बस आपका मेरा काम क्या कि इन सारे मामलात में अगर अबू खैसमा की तरह आपने की कि किसी काम से पीछे आ जाइए, कोई बात नहीं, काब बिन मालिक की तरह नहीं की और नेकी का मौका गुजर गया, बिस्मिल्लाह, उम्मीद उम्मीद और उम्मीद सबसे ज़्यादा। और ये कुरान का सफ़र ही ये सबक देता है कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। तो सूरह तौबा आपको मुझे तौबा करके लेके जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारा लीडर कितना तुमसे प्यार करता है, अल्लाह के नबी, उनकी दर्दमंदियों को इस सूरत के आखिर में लाकर अल्लाह ने बता दिया कि अगर कुछ लोग गुनाहों में डूब जाते हैं तो जो उनके पीछे लीडर्स होते हैं ना, उनको भी उनका पलटना, उनके वापस आने का इंतज़ार होता है। तो बहरहाल बातें तो और बहुत सारी सूरत पे की जा सकती हैं, लेकिन यहाँ सूरत तौबा पूरी हुई और सूरत यूनुस शुरू होती है। यहाँ एक खूबसूरत सी बात नोट करिए, आप देखिए कि ये जो लफ्ज़ साफ और यतूबू है ना, तौबा, बंदा गुनाह करके अल्लाह से दूर हुआ होता है और अल्लाह उसे अपनी रहमत को दूर करता है। तो अल्लाह करे कि हम सब अल्लाह के करीब आ जाएं। कभी माँ बचपन में नाराज़ हो जाए ना, आपने कभी बचपन का अपना सुने, बड़े बच्चों को कोई नहीं केयर होती, वो कहते हैं शुक्र है थोड़ी देर खामोशी रहेगी, ना ही बोले अम्मी, लेकिन छोटे बच्चे बहुत रोते हैं। माँ कहे ना बच्चे से जाओ चले जाओ, मैंने नहीं बोलना, मचलते हैं ज़मीन पर लौटते हैं। आज रोना है, अपना कोई गुनाह जो अभी तक दिल दिमाग पर बोझ पाल रहे हैं ना उसको दें, और अगर नहीं दिख रहा ना तो ये ना खुश हों कि हमने तो कभी गुनाह ही नहीं किया, अल्लाह से कहना कि अल्लाह मुझे मेरा वो गुनाह दिखा जो मुझे मेरे गुनाह नहीं दिखा रहा, ठीक है।